स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज हम आज की 10 तारीख और दिन रविवार। आरएसएस ने कहा राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न तो वो स्वागत करते हैं न विरोध।
वर्तमान बेंच ने एक विषय को उन्होंने चलाए हैं, कोर्ट ने कहा है देखेंगे इसके बारे में, हम इसका कोई स्वागत या विरोध नहीं करें।
झारखंड में भाजपा और आजसू के बीच में गठबंधन तय, पुलवामा में मारे गए जवानों के परिजन क्यों हैं सरकार से नाराज।
देखिए हमारी तो यही मांग है कि जिस तरीके का हमला ये पुलवामा में हुआ है इसके लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई, ना ही किसी तरीके की विपक्ष ने भी किसी तरीके के इस्तीफे की मांग की और ना ही अपर लेवल पे किसी तरीके की जाँच कराई गई।
ब्रिटेन में देखे गए नीरव मोदी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने देश की सेना की तारीफ की है क्योंकि मुश्किल समय में सेना उनकी सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और विपक्षी नेता खुआन ग्वाइदो मिलकर उन्हें सरकार से हटाना चाहते हैं, लेकिन सेना ऐसा नहीं होने देगी। एक रैली को संबोधित करते हुए निकोलस मादुरो ने खुआन ग्वाइदो पर आरोप लगाए कि उन्होंने देश की बिजली व्यवस्था को साइबर हमले के जरिए नुकसान पहुंचाया। वेनेजुएला में उसके इतिहास का सबसे लंबा ब्लैकआउट हुआ था, पूरे देश में 24 घंटे तक बिजली चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ निकोलस मादुरो के विरोध में वेनेजुएला में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनों में शामिल लोगों का कहना है कि हालात अब बेकाबू हो चुके हैं। एक महिला प्रदर्शनकारी को सुनिए। सिर्फ दवाइयां ही नहीं, अब तो पानी तक की कमी हो गई है, बच्चे मर रहे हैं, लोगों को मदद की ज़रूरत है लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं है। हम सब इससे आज़ादी चाहते हैं, मादुरो को अब जाना ही होगा। ये थे एक महिला प्रदर्शनकारी के शब्द। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज को रोबोट के जरिए सूचना दी गई कि वे कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। इस घटना के बाद से मरीज का परिवार सकते में है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे हैरान रह गए कि रोबोट जिस पर एक वीडियो स्क्रीन लगी हुई थी वह आईसीयू में दाखिल हुआ, उस स्क्रीन पर एक डॉक्टर दिख रहे थे जिन्होंने मरीज को बताया कि फेफड़ों में होने वाली समस्या के कारण कुछ ही दिनों में उनकी मौत होने वाली है। जिस वक्त यह घटना हुई उस समय मरीज की एक पोती एनालिसिया विल्हाम उस आईसीयू में ही मौजूद थी। उन्होंने इस बारे में बीबीसी को बताया। मैंने देखा कि दरवाजे के पास एक रोबोट था, उस पर एक स्क्रीन लगा हुआ था, स्क्रीन पर एक डॉक्टर दिख रहे थे। मुझे नहीं पता कि डॉक्टर कहाँ मौजूद थे लेकिन वे किसी कमरे में कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे थे। इसके बाद उन्होंने वीडियो में कहा कि उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट देख ली है, मेरे दादा के फेफड़े काम नहीं कर रहे। उन्होंने मेरे दादा के जीवन का सबसे दुखद समाचार उन्हें इस तरीके से सुनाया। ये थे अस्पताल में भर्ती मरीज की पोती के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अंतिम गढ़ समझे जा रहे बगोज गांव से और अधिक आम नागरिक बाहर निकले हैं। शनिवार को कम से कम 4 ट्रकों में बैठकर आम लोग गांव से बाहर निकले। इससे पहले सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने कहा था कि गांव जब पूरी तरह खाली हो जाएगा तो वह इस्लामिक स्टेट के उसके अंतिम गढ़ से खत्म करने की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर देंगे। माना जा रहा है कि बगोज गांव में इस्लामिक स्टेट के खात्मे के साथ ही यह समूह पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। हालांकि कुछ विश्लेषक मानते हैं कि कहीं कहीं कुछ स्लीपर सेल अभी भी सक्रिय हैं। ट्यूनीशिया की राजधानी में एक अस्पताल में 11 नवजात बच्चों की मौत के बाद अब ट्यूनीशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन बच्चों की मौत 24 घंटे के भीतर हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत हुई वह सरकारी फंड पर चलता है। ट्यूनीशिया वासियों को अपने देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत गर्व है लेकिन आर्थिक और अन्य समस्याओं के चलते अब यहाँ के स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आ रही है। सूडान में 9 महिलाओं को सरकार विरोधी प्रदर्शनों और दंगों में शामिल होने के आरोप में 20-20 कोड़े मारने और 1 महीने की सजा सुनाई गई है। राष्ट्रपति ओमर अल बशीर ने पिछले महीने सूडान में आपातकाल की घोषणा की थी। उसके बाद इन महिलाओं को इमरजेंसी अदालत में पेश किया गया। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राष्ट्रपति बशीर ने घोषणा की थी कि विरोध प्रदर्शनों में हिरासत में ली गई सभी महिलाओं को रिहा कर दिया जाएगा। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज हम आज की 10 तारीख और दिन है रविवार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की बैठक से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का जो फैसला किया है, संघ न तो इसका स्वागत करता है और न ही विरोध। ग्वालियर में चल रहे आरएसएस की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन संघ ने ये कल बातें कही। सुनिए शूर्य न्याजी की ये खास रिपोर्ट।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले को निपटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। ग्वालियर में चल रही आरएसएस की बैठक में पार्टी के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश का न तो समर्थन करता है और न ही विरोध। आरएसएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के दूसरे दिन उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है उसे अभी देखा जा रहा है।
राम जन्मभूमि के संदर्भ में वार्ता करें या सरकार मनाएं अथवा कोर्ट तय करें, तो हमने पिछले समय नवंबर दिसंबर में कुछ विषय जरूर कहा था, लेकिन अभी वर्तमान बेंच ने एक विषय को उन्होंने चलाए हैं, 8 सप्ताह उन्होंने दिया है तो वार्ता करें। डिमांड तो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए पक्ष वाले कोई ने किसी ने नहीं मांगा था। कोर्ट ने कहा है देखेंगे इसके बारे में, हम इसका कोई स्वागत या विरोध नहीं करें। बहुत पहले का अनुभव से हमको लगता है ये पूरा होगा, ऐसा हो गया तो अच्छी बात है, देखेंगे।
वहीं इस बैठक में एक प्रस्ताव शबरीमाला को लेकर लाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि शबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केरल सरकार ने हिंदुओं के साथ अन्याय किया है। दत्तात्रेय हसबोले ने आरोप लगाया कि हिंदू भक्तों पर सरकार बहुत ज्यादा ज्यादती कर रही है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को इससे जुड़े लोगों से भी बात करनी चाहिए थी।
सुप्रीम कोर्ट के प्रतिवेदन में जो कहा है वो स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार के संवेदनशील और एक विशेष परंपरा के धार्मिक विषयों के संदर्भ में करते समय उनसे संबंधित लोगों से भी बात करनी चाहिए, उनके साथ बात किए बिना ये निर्णय देना सुप्रीम कोर्ट के जो परंपरा सुप्रीम कोर्ट नहीं पाती है। समझो कोई मेडिकल विषय है तो मेडिकल एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को या सर्जन को बुलाकर बात करते हैं, ये वो करना चाहिए था, वहाँ एक पद्धति है उसे करना चाहिए था, ये हमारी अपेक्षा थी।
इस बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे। अमित शाह अंतिम दिन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। लोकसभा चुनाव की वजह से अमित शाह की मौजूदगी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश में हो रही इस बैठक के चलते प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के मंत्री चाहते हैं कि आरएसएस की शाखाओं को शासकीय कार्यालय में चलाने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के अपने वचन पत्र में इसका वादा किया था। मंत्री गोविंद सिंह ने कहा,
सरकार को बने 1.5 महीना भी नहीं हुआ, मैं अब हम बैठ रहे हैं जो प्राथमिकता है उनको देख रहा हूँ, इसके बाद उस पर भी होगा। भारतीय जनता पार्टी ये मत समझे कि कांग्रेस जो कहती है उन जैसा नहीं करती, कांग्रेस जो कहा उसका निभाएंगे और 1000% शासकीय परिसरों में शाखा लगाना प्रतिबंधित किया जाएगा।
वहीं इस बैठक में संघ ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की सराहना की। संघ ने कहा कि सरकार के फैसले का सभी स्वागत कर रहे हैं, पूरा देश इस वक्त सरकार के साथ खड़ा है। इस बैठक में देश के अलग अलग स्थानों से लगभग 1400 से अधिक प्रतिनिधि और प्रमुख कार्यकर्ता भाग ले रहे हैं। बैठक में सबकी मौजूदगी में संघ की साल भर की गतिविधियों की समीक्षा के बाद आगामी वर्ष के कार्यक्रमों के साथ ही संगठन के विस्तार की रूपरेखा भी तय की जा रही है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब चलते हैं झारखंड। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने आजसू पार्टी के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया है। आजसू पार्टी भाजपा की पुरानी सहयोगी रही है और वो झारखंड में भाजपा के साथ सरकार में भी शामिल है। वहीं विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में सीटों का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। सुनिए रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
झारखंड में 14 सीट में से 13 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और 1 सीट आजसू पार्टी एक सीट लड़ेगी, तो ये हमारा गठबंधन के रूप में, हम एक मजबूत गठबंधन के रूप में झारखंड में जाएंगे और पिछले चुनाव में भी दोनों पार्टियां जो एक मजबूत सरकार झारखंड के विकास की सरकार चला रही हैं, उसी प्रकार से मजबूती के साथ ये दोनों पार्टियां आगामी लोकसभा चुनाव में जाएंगी। और हम सभी की सभी सीटों पर दोनों पार्टियां मिलकर मेहनत करेंगे। एक सीट की घोषणा कुछ समय बाद झारखंड में की जाएगी।
यह आवाज भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव की थी। वे बता रहे थे कि झारखंड में राजग में शामिल आजसू पार्टी के साथ भाजपा का गठबंधन हो गया है। आगामी लोकसभा चुनाव अब दोनों पार्टियां साथ मिलकर लड़ेंगी। तय समझौते के तहत राज्य की कुल 14 लोकसभा सीटों में से 13 पर भाजपा और एक सीट पर आजसू पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में हुई वरिष्ठ नेताओं की बैठक में इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में आजसू पार्टी के प्रमुख और झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो भी मौजूद थे। उन्हें बताया कि उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के साथ पहली बार गठबंधन किया है। सुदेश महतो ने बीबीसी से कहा,
पार्लियामेंट पर हमारा कभी भी गठबंधन नहीं हुआ है, ये प्रथम बार है जब राष्ट्रीय परिपेक्ष में हमारा ये गठबंधन तय हुआ है। असेंबली पर हम लोग पिछले बार चुनाव मिलकर लड़े थे, लेकिन राष्ट्रीय परिपेक्ष में ये पहला होगा जो गठबंधन के साथ आएंगे, जहां हमारी तैयारी निश्चित रूप से कई सीटों पर थी, लेकिन 13-1 पर ही हम लोग ने सहमति बनाई है। जब हमने गठबंधन किया है तो यही कोशिश होगी कि परिणाम बड़ा, जब हमने 14 सीटों पर चुनाव में जाना है, लगातार वहां पर हम कार्य करते रहे हैं, लोगों के साथ हमारा जुड़ाव बेहतर है, राष्ट्रीय परिपेक्ष में इस गठबंधन के महत्व और मायने बहुत अलग है, इसलिए यह उम्मीद किया जा सकता है कि बड़ी जीत होगी।
भाजपा नेताओं ने अभी तक यह खुलासा नहीं किया है कि आजसू किस सीट से चुनाव लड़ेगी। इसके बावजूद आजसू का दावा है कि उसे गिरिडीह की सीट ऑफर की गई है। यह सीट अभी भाजपा के कब्जे में है। आजसू पार्टी के प्रवक्ता देवशरण भगत ने बताया कि उनकी पार्टी ने हजारीबाग, गिरिडीह और रांची की सीटों पर अपना दावा किया था।
राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में झारखंड के लोकसभा सीटों को लेकर के आजसू और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अभी सीट शेयरिंग हुआ है, इसमें 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एक सीट गिरिडीह सीट पर आजसू चुनाव लड़ेगी, इसका निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। हम लोग निश्चित तौर पर 3 सीट गिरिडीह, हजारीबाग और रांची में रायशुमारी किया था।
हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि भाजपा ने भले ही गठबंधन कर सीटों का फॉर्मूला तय कर लिया हो, लेकिन स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को मना पाने में उसे दिक्कतें हो सकती हैं। और इस पत्रकार मधुकर ने कहा,
गिरिडीह चुनाव और लोकसभा क्षेत्र में अगर आजसू को टिकट मिलता है तो वहाँ एक नहीं कई दुश्मन भाजपा के खड़े हो जाएंगे, जो भाजपा के लगातार जीतने वाले रविन्द्र पांडे हैं या भाजपा के टिकट के लिए दावेदार टुल्लू महतो हैं, जो कभी जेडीएम में हुआ करते थे और वो सरकार से मदद की उम्मीद में भाजपा में शामिल होकर के भाजपा से चुनाव लड़े और अभी बड़े कोयला व्यवसायियों में एक माने जाते हैं, जिन दोनों का आतंक है, इन दोनों का भी कोप झेलना पड़ेगा। ये एक सबसे बड़ा संकट है और वैसे में भाजपा यह सीट लूज कर सकती है।
आजसू पार्टी ने पिछला लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ा था, तब चुनाव लड़ रहे उनके सभी 9 उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा। पार्टी प्रमुख सुदेश महतो खुद चुनाव हार गए थे और रांची सीट पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी। इसके बाद उन्होंने साल 2014 में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा और हार गए। पिछले साल हुए विधानसभा उपचुनाव में भी उन्होंने किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। तब से वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। ऐसे में इस गठबंधन से उन्हें काफी उम्मीदें हैं। रवि प्रकाश, बीबीसी रांची।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
पिछले महीने भारत प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों का कहना है कि वो इस घटना की जांच चाहते हैं। उनका दावा है कि इसके लिए उन्होंने कई जगह अपील की है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। उन्नाव जिले के रहने वाले अजीत कुमार आजाद भी इस हमले में मारे गए थे। उनके परिजन भी बालाकोट एयर स्ट्राइक पर तमाम सवाल उठाते हुए पुलवामा घटना की जांच की मांग कर रहे हैं। हमारे सहयोगी समीर आत्मन मिश्र ने उन्नाव में इन लोगों से बात की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
सरकार ने क्या सुविधाएं दी है, 25 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी, तो हमने भी तो कुछ खोया है। 25 लाख रुपए दे दिए तो कौन सा हमारे बच्चे उसमें पढ़ लिख जाएंगे, उनको प्यार तो नहीं मिलेगा, ना पिता का प्यार मिलेगा ना कुछ। क्या
मीना गौतम बात भले ही गुस्से में कर रही हों, लेकिन इतना बोलने के बाद उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मीना गौतम के पति अजीत कुमार आजाद 39 जवानों में से एक थे जो 14 फरवरी को पुलवामा में हुए चरमपंथी हमले में मारे गए थे। उन्नाव शहर में लोकनगर मोहल्ले के रहने वाले अजीत कुमार आजाद CRPF बटालियन 115 में तैनात थे। मीना गौतम को इस बात का भी दुख है कि पुलवामा घटना के बाद हुई एयर स्ट्राइक की हर जगह चर्चा हो रही है, जबकि पुलवामा में 40 से ज्यादा जवानों के मारे जाने का जैसे कोई गम ही न हो। इस घटना के बदले में अब तक की गई कार्रवाई से भी वो संतुष्ट नहीं है।
नहीं, हम नहीं संतुष्ट हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कार्रवाई हुई, ना कोई बदला हुआ ना कुछ हुआ, खाली एयर स्ट्राइक करके थोड़ा सा उनके कैंप वैम्प तोड़ दिए, बोले कि हाँ हमने बदला ले लिया, 300 को मार दिया, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, ये सरकार बलगरा रही है हम लोगों को क्योंकि अपने चुनाव में लगी हुई है, इसकी जाँच होनी चाहिए।
हालांकि घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुलकर कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा और इसके पीछे जो लोग हैं उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा।
इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमले के पीछे जो ताकतें हैं, जो भी गुनहगार है, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी।
लेकिन अजीत कुमार के परिवार वालों को इस बात का मलाल है कि पुलवामा घटना की जांच के नाम पर सब चुप हैं। अजीत कुमार के छोटे भाई रंजीत कुमार आजाद कहते हैं,
देखिए हमारी तो यही मांग है कि जिस तरीके का हमला ये पुलवामा में हुआ है, इसमें जो चूक हुई है, पहली चीज तो इसको केंद्र सरकार को मानना चाहिए कि ये हमारी चूक है, हमारे सुरक्षा तंत्र में कमी रह गई है जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो इसके लिए कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली गई, ना ही किसी तरीके की विपक्ष ने भी किसी तरीके की इस्तीफे की मांग की और ना ही अपर लेवल पे किसी तरीके की जांच कराई गई। तो हम तो यही चाहते हैं कि इस हमले की चुनाव से पहले जांच हो और पता चले कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि इतना एक्सप्लोजिव वहां पहुंच पाना कोई आसान बात नहीं है। इसमें एक आदमी तो रहा नहीं होगा, इसमें बहुत सारे आदमी रहे होंगे।
अजीत कुमार के परिवार में चार भाइयों के अलावा उनके माता पिता, पत्नी और दो छोटी बेटियां हैं। पत्नी मीना देवी को राज्य सरकार ने सहायक क्लर्क की नौकरी दी है। परिवार वालों को मुआवजा भी मिला है, लेकिन वे लोग घटना की जांच चाहते हैं ताकि इसके पीछे यदि कोई साजिश हुई हो तो उसका पता लगे और ऐसी घटनाएं दोबारा रोकी जा सकें। परिवार वालों का कहना है कि बालाकोट की घटना को लेकर जानबूझकर तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं और उसकी आड़ में पुलवामा की घटना को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस तरह की शिकायत न सिर्फ अजीत कुमार के परिजनों की है बल्कि पुलवामा में मारे गए कुछ अन्य जवानों के परिजनों की भी है। भारतीय वायुसेना के अधिकारी विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर इन्हें खुशी है, लेकिन इनका यह भी कहना है कि ये जितनी बड़ी कामयाबी है, पुलवामा में 40 जवानों का मारा जाना और उसके बाद भी ये सिलसिला जारी रहना हमारी बहुत बड़ी कमजोरी भी है। समीर आत्मज मिश्र, BBC उन्नाव।
पुलवामा और बालाकोट के बाद पैदा हुए हालात पाकिस्तान के उर्दू अखबारों में भी इस हफ्ते छाए रहे। इस हफ्ते पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में और क्या कुछ था खास, बता रहे हैं नवीन नेगी।
पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों में इस हफ्ते पाकिस्तान स्थित चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई, एक मंत्री की बर्खास्तगी और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से जुड़ी खबरें छाई रहीं। सबसे पहले बात चरमपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई की। पुलवामा हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को एक डोजियर दिया था जिसमें पाकिस्तान की धरती पर सक्रिय कई चरमपंथी संगठनों के बारे में जानकारी साझा की गई थी। पाकिस्तान कहता रहा था कि अगर भारत कोई ठोस सबूत देता है तो पाकिस्तान अवश्य उसके खिलाफ कदम उठाएगा। अखबार जंग के अनुसार भारत के दिए डोजियर के आधार पर पाकिस्तान ने चरमपंथी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के भाई और बेटे समेत कुल 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और कई चरमपंथी संगठनों पर पाबंदी लगा दी है। अखबार के अनुसार पाकिस्तान के गृह मंत्री शहरयार आफरीदी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि चरमपंथी संगठनों पर कार्रवाई नेशनल एक्शन प्लान के तहत हो रही है और किसी के दबाव में नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि उस पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम लग सके। उन्होंने कहा कि जमातुद्दावा और फलाह इंसाइयत फाउंडेशन के कई दफ्तर सील कर दिए गए हैं और उनकी प्रॉपर्टी को कब्जे में ले लिया गया है। इन संगठनों के जरिए चलाए जा रहे कई मदरसों को भी बंद कर दिया गया है और सरकार ने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया है। अखबार एक्सप्रेस के अनुसार पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों के कारण जंग का खतरा फिलहाल टल गया है। इमरान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव में कमी आई है, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। इमरान खान ने कहा कि चरमपंथी संगठनों पर कार्रवाई पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ऐसा नहीं किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अंतर्राष्ट्रीय जगत से अपील की है कि वो चरमपंथी संगठनों से निजात पाने में पाकिस्तान की मदद करें। अखबार एक्सप्रेस ने सुर्खी लगाई थी, पाक नेवी ने भारतीय सबमरीन के हमले को नाकाम कर दिया। अखबार ने पाकिस्तानी नौसेना के प्रवक्ता कोमोडोर ओबिदुल्लाह के हवाले से लिखा है कि सोमवार की शाम पाकिस्तानी समयानुसार करीब 8:35 पर पाकिस्तानी मैरीटाइम जोन में घुसने की कोशिश कर रहे भारतीय पनडुब्बी को पाकिस्तानी नौसेना ने पीछे हटने पर मजबूर कर दिया।
नौसेना के प्रवक्ता के अनुसार पाकिस्तान ने क्षेत्र में शांति कायम करने के लिए भारतीय पनडुब्बी को निशाना नहीं बनाया। प्रवक्ता के अनुसार भारतीय पनडुब्बी उच्च स्तरीय आधुनिक तकनीक से लैस थी, फिर भी वो पाकिस्तानी पानी की सरहद में खुद की पहचान छिपाने में नाकाम रही और पाकिस्तानी नेवी ने न केवल उसे पहचान लिया बल्कि भारतीय पनडुब्बी को वापस भेजने पर मजबूर कर दिया। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इन आरोपों को खारिज कर दिया है।
तो पाकिस्तान से छपने वाले उर्दू अखबारों की सुर्खियों के बारे में बता रहे थे नवीन नेगी। और अब बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन के दैनिक अखबार द टेलीग्राफ ने कल बताया था कि भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी लंदन के वेस्ट एंड इलाके के 75 करोड़ रुपए के अपार्टमेंट में रह रहे हैं। इसके बाद इसी अखबार की वेबसाइट पर नीरव मोदी का एक वीडियो पब्लिश किया गया जिसमें वो गुलाबी शर्ट और एक महंगी जैकेट पहने नजर आए। अधिकतर भगोड़े ब्रिटेन क्यों जाते हैं और नीरव मोदी का प्रत्यर्पण कितना आसान है, सुनिए मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट।
द टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट सामने आने के बाद कल दोपहर को प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट कर बताया कि उसने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की अर्जी ब्रिटेन को पिछले साल जुलाई में ही भेज दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने ट्वीट में लिखा कि ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के केंद्रीय प्राधिकरण ने उसकी अर्जी मिलने की पुष्टि भी की थी और आगे की कार्यवाही के लिए उसको वेस्टमिंस्टर मैजिस्ट्रेट कोर्ट भेज दिया था। 13,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के आरोपी 48 साल के नीरव मोदी को लेकर अब तक सिर्फ कयास लगाए जाते थे कि वो लंदन में है, लेकिन उनका वीडियो सामने आने के बाद इसकी अब पुष्टि हो चुकी है। बैंकों का कर्जा लेकर फरार एक कारोबारी विजय माल्या भी इस समय लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण को लेकर केस लड़ रहे हैं। आखिरकार ऐसा क्या है जो विवादित लोग लंदन में शरण लेते रहे हैं? भारत के पूर्व विदेश सचिव और लंदन में भारत के उच्चायुक्त रहे सलमान हैदर इस सवाल का जवाब देते हैं। वो कहते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह भारत और ब्रिटेन का एक जैसा कानून होना है।
जो लीगल सिस्टम है ब्रिटेन का, वो उसमें और हमारे लीगल सिस्टम में बहुत मेल है, दे वेरी सिमिलर। अगर हमारे लॉयर या कोई लीगल प्रोसेस उसके बारे में हम सोच रहे हैं तो जो इंग्लैंड में होता है, जो लंदन में होता है, वो हमारे सिस्टम से बहुत मिलता है।
कानूनी वजहों के अलावा ब्रिटेन में भारतीय लोगों का वहां होना भी एक बड़ी वजह है। लंदन में बीबीसी संवाददाता नरेश कौशिक कहते हैं कि लंदन में बहुत से भारतवासी रहते हैं जिसके कारण यहां रहना आसान है।
कि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में क्योंकि हिंदुस्तानी पाकिस्तानी रहते हैं इसलिए यहां पर रहना आसान है। इसलिए बहुत सारे लोग यहां पर, जैसे आपको ना खाने की चिंता है, खाना आपको भारतीय पाकिस्तानी और हमारा जो दक्षिण एशियाई खाना है वो आसानी से यहाँ मिल जाता है।
विजय माल्या के प्रत्यर्पण का मामला भी लंदन की कोर्ट में चल रहा है, तो क्या इसी तरह से नीरव मोदी का मामला भी कोर्ट में चलेगा और उनको ब्रिटेन से कैसे प्रत्यर्पित किया जा सकता है, ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर सलमान हैदर कहते हैं कि भारत से फरार होकर ब्रिटानिया में पहुंचने वाले लोगों को न्याय का पूरा मौका दिया जाता है।
यहां तो फरार है, ये लोग यहां भाग के जाते हैं, मोहरत मिलती है, टाइम मिलता है कि एक लीगल प्रोसेस फिर से शुरू करवाया वहाँ जो इंडिया से भाग के गए।
नीरव मोदी द्वारा ब्रिटेन से राजनीतिक शरण मांगने की खबरें हैं, लेकिन इस पर ब्रिटेन सरकार ने अब तक कुछ नहीं बोला है। उसका कहना है कि वो व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करती है। तो क्या कानूनी पेचीदगियों के कारण भारत नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे उद्योगपतियों को ब्रिटेन से वापस नहीं ला पाएगा? नरेश कौशिक कहते हैं,
बिल्कुल जल्दबाजी होगी, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत के पक्ष में यही बात जाती है कि उनके ऊपर जिस तरह के आरोप हैं वो काफी संगीन है और ब्रिटेन की सरकार इस समय भारत को नाराज नहीं करना चाहेगी, लेकिन फिर भी कोर्ट किस तरह से उसको देखते हैं, कोर्ट हर चीज को किस तरह से वो एविडेंस, भारत के वकील किस तरह से यहाँ तर्क देते हैं, भारत की तरफ से जो यहाँ वकील नियुक्त होंगे कोर्ट में कैसी वो वकील तर्क देते हैं तो उसके ऊपर निर्भर करता है। और
ब्रिटेन अगर अपने यहाँ भागकर आए घोटालेबाज कारोबारियों को भारत भेजने की अनुमति दे भी देता है तो उन लोगों के पास ऊपरी कोर्ट में जाने के मौके भी होंगे। विजय माल्या के मामले में भी यही देखा गया है जो ऊपरी कोर्ट में अपील कर रहे हैं। इस लिहाज से इन भगोड़े कारोबारियों को वापस भारत लाना एक लंबी प्रक्रिया होगी। मोहम्मद शाहिद, बीबीसी दिल्ली।
और अब वक्त हो चला है अखबारों की समीक्षा का और मेरे साथी नवीन नेगी अखबारों के साथ मौजूद हैं। बताइए नवीन।
जी इकबाल जी, आज भी दिल्ली से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों में नीरव मोदी से जुड़ी हुई खबर को ही पहले पन्ने पर जगह दी गई है। और जैसे कि हम रिपोर्ट भी सुन रहे थे, मोहम्मद शाहिद हमारे जो साथी, उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सरकार और प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि उन्हें पता है कि नीरव मोदी ब्रिटेन में है और उनके प्रत्यर्पण की कोशिशें की जा रही हैं। बाकी खबरों की तरफ बढ़ें तो चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा है कि वे अपने चुनाव प्रचार में सेना की तस्वीरों का या सैन्य अभियानों का जिक्र ना करें। पुलवामा हमले और उसके बाद बालाकोट में जो भारत की ओर से एयर स्ट्राइक की गई थी, उसके बाद ये देखने को मिला था कि कई जगह जो चुनाव प्रचार हुए थे, कई राजनीतिक दलों ने उसमें सेना की तस्वीरों का इस्तेमाल किया था। तो हिंदुस्तान टाइम्स में इससे जुड़ी हुई एक खबर में बताया गया है कि चुनाव आयोग ने साल 2013 के अपने उस खत का जिक्र किया है जिसमें यह बताया गया था कि कोई भी राजनीतिक दल जो है सेना से जुड़ी हुई चीज़ों का अपने चुनाव अभियान में इस्तेमाल नहीं कर सकता है। इस बीच शनिवार को ही राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जो है एयर स्ट्राइक का जिक्र किया और कहा कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक का इंतजार कर रहा था लेकिन हमने जो है हवाई रास्ते से हमला किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने उन्होंने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने जब 26/11 हमला हुआ था उसके बाद क्या किया, सिर्फ अपना गृह मंत्री बदल दिया, नीतियों को नहीं बदला। एक और खबर की तरफ हम अपने श्रोताओं का ध्यान ले जाएं तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन की खबरें हैं वो लगातार अभी भी सुर्खियों में आती जा रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार के अनुसार कांग्रेस का एक धड़ा अभी भी चाहता है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस गठबंधन कर ले। और इसी बीच जो शनिवार को दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन से क्या नफा नुकसान हो सकता है इसको लेकर चर्चाएं हुई थी। एक और खबर है हिंदुस्तान टाइम्स से प्रकाशित है जिसमें बताया गया है कि भारतीय क्रिकेटरों ने मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें फौजी टोपी पहनी थी, इस पर पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है और आईसीसी से कहा है कि वे इस पर कदम उठाएं।
बहुत शुक्रिया नवीन नेगी आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और इसके साथ ही अब वक्त हो चला है खेल समाचार का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की सीरीज का चौथा मुकाबला आज मोहाली में खेला जाएगा। पहला मैच 6 विकेट से और दूसरा मैच 8 रन से जीतने के बाद मेजबान भारत के हौसले बुलंद थे, लेकिन तीसरा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने 32 रन से जीतकर सीरीज में रोमांच पैदा कर दिया है। सबसे बड़ी बात, कप्तान आरोन फिंच रांची में 93 रन बनाकर लंबे समय बाद फॉर्म में लौटे हैं, तो उस्मान ख्वाजा ने भी आखिरकार अपने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शतक का स्वाद चख ही लिया। स्पिनर एडम जैम्पा ने 3 विकेट झटक कर ऑस्ट्रेलिया जीत में अपनी अहम भूमिका निभाई। दूसरी तरफ भारत के कप्तान विराट कोहली रन मशीन हैं। उनके बल्ले से रांची में शतक भी निकला लेकिन दूसरे छोर से उन्हें मदद नहीं मिली। आज मोहाली में विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेलेंगे तो मोहम्मद शमी को लेकर भी चिंताएं हैं, जिसे लेकर भारत के बल्लेबाजी कोच संजय बांगर पहले ही कह चुके हैं
कुछ चेंजेस जरूर होंगे क्योंकि माही रेस्ट ले रहे हैं तो दो मैच नहीं खेलने वाले, तो उनकी जगह जरूर एक जगह बनती है। और शामी को भी चोट लगी है पैर में, तो हमें ये भी देखना होगा कि वो फिट हो पाएंगे या नहीं। अगर वो फिट नहीं होते तो भुवनेश्वर कुमार भी खेल सकते हैं उनकी जगह, तो वो सारे डिसीजन कप्तान और कोच जो है वो मैच के पहले लेंगे।
महेंद्र सिंह धोनी की जगह आज ऋषभ पंत ले सकते हैं। देखना है क्या आज भारत जीत के बाद सीरीज अपने नाम करता है या ऑस्ट्रेलिया मैच जीतकर 2-2 से बराबरी हासिल कर लेती है।
तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के इस मैच पर सबकी लगी हैं निगाहें। और चलते चलते एक बार फिर सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति मादुरो ने अपना साथ देने के लिए देश की सेना की तारीफ की है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित एक अस्पताल में भर्ती एक मरीज को रोबोट के जरिए सूचना दी गई कि वे कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। इस घटना के बाद से मरीज का परिवार सकते में है। सीरिया में इस्लामिक स्टेट के अंतिम गढ़ समझे जा रहे बगोज गांव से और अधिक आम नागरिक बाहर निकले हैं। शनिवार को कम से कम 4 ट्रकों में बैठकर आम लोग गांव से बाहर निकले। ट्यूनीशिया की राजधानी में एक अस्पताल में 11 नवजात बच्चों की मौत के बाद अब ट्यूनीशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन बच्चों की मौत 24 घंटों के भीतर हुई। सूडान में 9 महिलाओं को सरकार विरोधी प्रदर्शन और दंगों में शामिल होने के आरोप में 20 कोड़े मारने और 1 महीने की सजा सुनाई गई। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं पर आज समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली थी देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप चाहें तो 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार।